नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में करीब 3,200 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्री मोदी आज शाम असम में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत पर संज्ञान लेने से इंकार करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की। असम के होजाई जिले में सैरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 7 हाथियों की मौत। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना टू भ्रष्टाचार मामले में 17-17 साल जेल की सजा सुनाई गई। लद्दाख में नए साल का त्योहार लोसर मनाया जा रहा है और BWF वर्ल्ड टूर बैडमिंटन फाइनल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज शाम हांगझोऊ में सेमीफाइनल में चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग के साथ खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में 3,200 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। श्री मोदी का हेलीकॉप्टर कम दृश्यता के कारण नदिया जिले के रानाघाट में ताहिरपुर में उतर नहीं पाया, इसलिए उन्होंने वर्चुअल माध्यम से जनसभा को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही है, जिसकी काफी लंबे समय से उपेक्षा की जा रही थी।
हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि पश्चिम बंगाल के उन हिस्सों को भी आधुनिक कनेक्टिविटी मिले जो लंबे समय तक वंचित रहे हैं। बराजगुली से कृष्णानगर तक फोर लेन बनने से नॉर्थ 24 परगना, नदिया, कृष्णानगर और अन्य क्षेत्रों के लोगों को बहुत लाभ होगा। इससे कोलकाता से सिलीगुड़ी की यात्रा का समय करीब 2 घंटे तक कम हो गया है।
प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के लगभग 67 किलोमीटर लंबे बारजागुली कृष्णनगर खंड के 4 लेन के निर्माण का उद्घाटन किया। उन्होंने राज्य के उत्तर 24 परगना जिले में 17 किलोमीटर से अधिक लंबे 12-7 बारजागुली खंड के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री आज शाम पश्चिम बंगाल से असम के लिए रवाना होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी राज्य में करीब 15,600 करोड़ रुपए की कीमत विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल से गुवाहाटी पहुंचने पर 4,000 करोड़ रुपए की लागत से बने नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्रीमती हवाई अड्डे पर पूर्व मुख्यमंत्री गोपीनाथ बरदले की 80 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे और टर्मिनल भवन के बाहर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री शहर में भाजपा मुख्यालय की ओर एक विशाल रोड शो का भी नेतृत्व करेंगे और पार्टी कार्यकर्ता से भी बातचीत करेंगे। कल प्रधानमंत्री ब्रह्मपुत्र नदी पर क्रूज जहाज से यात्रा करते हुए अपने कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के तहत स्कूलों के छात्रों से बातचीत करेंगे। इसके बाद श्री मोदी शहर में असम आंदोलन के 807 शहीदों के यादों में नवनिर्मित शहीद स्मारक क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नामरूप के लिए रवाना होंगे, जहां वे 12,000 करोड़ रुपए की अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। नई दिल्ली रवाना होने से पहले वे नामरूप में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अमीनुल्लाह जुद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि परिधान और वस्त्र उद्योग आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। आज नई दिल्ली में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये वस्त्र उद्योग में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।
India's apparel and textile sector journey is craftsmanship, innovation, global achievements and the people who shaped it. Everything is being there. The book stands as a tribute to the enduring spirit of Indian textiles and their ever-expanding global footprint.
पुरस्कार विजेताओं को शुभकामनाएं देते हुए उपराष्ट्रपति ने उनकी लगन और कड़ी मेहनत की सराहना की। उन्होंने कहा कि कपड़ा उद्योग देश में कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता उद्योग है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पांच अन्य के खिलाफ संज्ञान लेने से इंकार करने के निचली अदालत के निर्णय के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की है। याचिका में प्रवर्तन निदेशालय ने निचली अदालत के फैसले को खारिज करने और धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत उसकी समीक्षा करने को कहा है। अदालत ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में जांच जारी रख सकता है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में विशेष न्यायाधीश विशाल गोज ने इस संबंध में मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था। ईडी ने अपने आरोप पत्र में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और अन्य को मुख्य आरोपी बताया है। आरोप है कि 2000 करोड़ रुपए से अधिक की परिसंपत्तियां एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड कंपनी द्वारा गैरकानूनी ढंग से अधिग्रहित की गई थी। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। एक रिपोर्ट।
नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने कहा है कि देश के विमान बेड़े की संख्या 2014 में 395 की तुलना में 2025 में बढ़कर 844 हो गई है। उन्होंने नागर विमानन मंत्रालय के अधीन नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में कहा कि पिछले एक दशक में देश में यात्रियों की संख्या में प्रतिवर्ष औसतन 9% की वृद्धि हुई है, जबकि माल ढुलाई में 2.9% की वृद्धि हुई है। नागर विमानन महानिदेशालय के महानिदेशक फैज अहमद किदवई ने सक्रिय सुरक्षा निगरानी और वैश्विक समन्वय के प्रति नियामक की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस कार्यक्रम में सुरक्षा संबंधी चुनौतियों पर चर्चा की गई, जिनमें रनवे अतिक्रमण, विमानन में सकारात्मक सुरक्षा कार्य और रखरखाव त्रुटि शामिल थे। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
भोपाल में आधुनिक, तेज और सुविधाजनक यात्रा के साधन का सपना अब साकार हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री सुभाष मेट्रो स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर मेट्रो को रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मेट्रो में सवारी भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
भोपाल में करीब 8 साल के इंतजार के बाद आज शाम 4 बजे कुशाभाउ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर मिंटो हॉल में भोपाल मेट्रो का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसके बाद शाम 5 बजे सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद दोनों अतिथि 6.22 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर मेट्रो में सवार होकर एम्स मेट्रो स्टेशन तक जाएंगे, जहां आयोजित स्वागत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। सुभाष नगर से एम्स के बीच कुल 8 स्टेशनों वाले इस कॉरिडोर पर प्रतिदिन 17 ट्रिप चलाई जाएंगी और मेट्रो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक लगभग 3 मिनट में पहुंचेगी। मेट्रो का न्यूनतम किराया 20 रुपए रखा गया है। 21 दिसंबर की सुबह 9 बजे से आम नागरिक भी मेट्रो में सफर कर सकेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नवनिर्मित दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय का दौरा किया। श्री नड्डा ने इस क्षेत्र के देशों के मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से बातचीत भी की। केंद्रीय श्रम, रोजगार, युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि विभाजित विश्व और संवाद के कम अवसर को देखते हुए ऑरोविले के वसुधैव कुटुंबकम का महत्व बढ़ रहा है। उन्होंने पुदुचेरी के पास ऑरोविले अंतर्राष्ट्रीय टाउनशिप में चल रहे ऑरोविले साहित्य महोत्सव के विशेष पूर्ण सत्र के दौरान छात्रों से बातचीत की। असम में आज तड़के होजाई जिले में सैरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से हाथियों के एक झुंड के 7 हाथियों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। अधिकारियों के अनुसार इस हादसे में ट्रेन के इंजन समेत 5 डिब्बे भी पटरी से उतर गए। दुर्घटना में किसी भी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। यह हादसा रात्रि 2:17 पर हुआ। नगांव के मंडल वन अधिकारी सुहास कदम ने बताया कि चंगजुराई गांव में हुई यह दुर्घटना इलाके में घने कोहरे के कारण होने की आशंका है। नागर विमानन मंत्रालय ने कोहरे और कम दृश्यता की स्थिति को देखते हुए सभी विमानन कंपनियों को यात्री सुविधा संबंधी मानदंडों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि विमानन कंपनियों को समय पर और सटीक उड़ान जानकारी सुनिश्चित करने, लंबी देरी के दौरान भोजन और जलपान की व्यवस्था कराने और उड़ान रद्द होने की स्थिति में दोबारा बुकिंग या धन वापसी की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ स्थानों पर कल तेज बर्फबारी की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज दोपहर 1 बजे AQI 396 दर्ज किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIN को फॉलो कर सकते हैं। पाकिस्तान की एक अदालत ने आज तोशाखाना 2 भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17-17 साल की सजा सुनाई है। ये मामला राजकीय उपहारों में कथित धोखाधड़ी से संबंधित है। इन उपहारों को इमरान खान और बुशरा बीबी ने 2021 में सऊदी सरकार से प्राप्त किया था। विशेष अदालत के न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमन ने रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अडियाला जेल में इस मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने पति पत्नी दोनों पर 1,64,00,000 पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लद्दाख में आज नव वर्ष के अवसर पर लद्दाख लोसर उत्सव मनाया जा रहा है। उपराज्यपाल रविन्द्र गुप्ता ने लोसर के अवसर पर लद्दाख के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं और सभी के लिए शांति, समृद्धि और समरसता की कामना की है। एक रिपोर्ट।
लोसर लद्दाख का प्रमुख धार्मिक त्योहार है। ये त्योहार सर्दियों में मनाया जाता है। इसमें आने वाले वर्ष में पशुपालन से समृद्धि, अच्छी फसल और धन की कामना की जाती है। तिब्बती भाषा में लोसर का अर्थ है नया साल। ये नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। ये त्योहार मुख्य रूप से तिब्बत, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल और भूटान में मनाया जाता है। लोसर की पूर्व संध्या पर कल दिए जलाए गए। इस अवसर पर इमारतें, घर, मठ, स्तूप जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान रोशनी से जगमगा उठे। लोसर का उत्सव नए साल से 9 दिन तक चलता है। इसमें देवी देवताओं की पूजा की जाती है। आईबैक्स के सम्मान में नृत्य और गीत गाए जाते हैं और माउंट कैलाश की तीर्थ यात्रा की जाती है। नए साल का स्वागत आईबैक्स, सूरज और चांद की आटे से बनी मूर्तियों और रसोई की दीवारों पर आटे से बने शुभ चिन्हों से किया जाता है। लद्दाख से यांगचंग डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सशस्त्र सीमा बल के स्थापना दिवस के अवसर पर बल के सभी कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सशस्त्र सीमा बल का अटूट समर्पण सेवा और बलिदान की सर्वोच्च परंपराओं को दर्शाता है। सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट के लिए नागरिकों से सुझाव और विचार आमंत्रित किए हैं। बजट फरवरी में पेश किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य समावेशी विकास और राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ावा देते हुए जनता की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है। सुझाव www.mygov.in पोर्टल पर भेजे जा सकते हैं। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज चीन के हांगझाऊ में BWF विश्व टूर फाइनल्स के सेमीफाइनल में चीन के लियांग वेई किंग और वांग चांग से खेलेंगे। सात्विक और चिराग ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल कर कल शाम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी बनी। जम्मू कश्मीर के मौलाना आजाद स्टेडियम में आज पहली अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता रुस्तम ए जम्मू कश्मीर की मेजबानी की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कुश्ती में 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पहलवान हिस्सा लेंगे।
ये प्रतियोगिता भारत, ईरान और कई देशों के पेशेवर पहलवानों को एक साथ लाएगी, जिससे ये केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होने वाली सबसे बड़ी कुश्ती आयोजनों में से एक बन जाएगा। इस आयोजन का मकसद क्षेत्र की समृद्ध दंगल विरासत को फिर से जीवित करना और साथ ही खिलाड़ियों को एक वैश्विक मंच प्रदान करना है। जम्मू कश्मीर खेल परिषद द्वारा आयोजित इस बड़े आयोजन का मकसद कुश्ती के पारंपरिक खेल के माध्यम से एकता, शक्ति, फिटनेस और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देना है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैना।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में करीब 3,200 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्री मोदी आज शाम असम में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत पर संज्ञान लेने से इंकार करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 भ्रष्टाचार मामले में 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई गई। लद्दाख में नए साल का त्यौहार लोसर मनाया जा रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।